पृष्ठ संख्या 82, शीर्षक है बिंदु चौथा, ऐतिहासिक दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति और विकास। धर्म का दार्शनिक विवेचन तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास को न जान लिया जाए। जिस धर्म को लेकर आज मानव जीवित है, उसका एक इतिहास है। पृष्ठ संख्या 83। मानव संस्कृति के उत्थान में धर्म का प्रमुख हाथ रहा है, अतः इसे जानने के लिए भी धर्म के ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। धर्म क्या है? इस प्रश्न का भी उत्तर पाने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक पहलू को देखना होगा, क्योंकि धर्म का क्या स्वरूप है, यह तभी जान सकते हैं जब यह जान लें कि मानव जीवन की सफलताओं और असफलताओं के बीच धर्म ने क्या किया है और क्या करता है। विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टि से धार्मिक अवस्थाओं का वर्गीकरण अपने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर किया है। सबसे प्राचीन वर्गीकरण हेगेल द्वारा किया गया है, जो काल्पनिक तथा प्राचीन होने के कारण मान्य नहीं है। दूसरा अति आधुनिक वर्गीकरण साइबेक द्वारा किया गया है। इनके द्वारा धर्म को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक धर्म, दूसरा है नैतिक धर्म तथा तीसरा है मुक्तिदायक धर्म। इस वर्गीकरण को भी विद्वानों ने विवादग्रस्त होने के कारण स्वीकार नहीं किया है। इसमें नैतिक और मुक्तिदायक धर्म की दो विभिन्न अवस्थाएं मानी गई हैं, जबकि इन दोनों के बीच अंतर करना कठिन है। प्रोफेसर गैलवे के अनुसार धर्म की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है जातीय धर्म, दूसरा है राष्ट्रीय धर्म, तीसरा है विश्वव्यापी धर्म। डी एम एडवर्ड ने प्रोफेसर गैलवे के इस वर्गीकरण का अनुमोदन किया है। यह वर्गीकरण धर्म के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से किया गया है। अधिकांश रूप से विद्वानों ने इसे ही स्वीकार किया है और अन्य विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण का भी किसी न किसी रूप में इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। एटकिंसन ली ने जिन प्रथम दो धार्मिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है और उनकी जितनी विशेषताएं हैं, वह सब गैलवे के जातीय धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। ली द्वारा वर्णित उक्त दोनों अवस्थाओं का अस्तित्व गैलवे द्वारा वर्णित जातीय धर्म की अवस्था में मिलता है, क्योंकि मानव इस अवस्था में गिरोहों में रहता था। उसका गठन जाति मूलक ही रहा। दूसरी अवस्था राष्ट्रीय धर्म की है, जिससे विभिन्न जातियां एक दूसरे के समीप आने के कारण तथा विचारों के आदान प्रदान से राष्ट्र के रूप में संगठित हो गईं। राष्ट्रीय धर्म के पश्चात अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के उदय होते ही सार्वभौम या विश्वव्यापी धर्म का आरंभ होता है। इसे हम प्रोफेसर ली के आध्यात्मिक धर्म से संबद्ध कर सकते हैं। अतः गैलवे द्वारा किए गए वर्गीकरण के आधार पर हम विभिन्न धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। अगला शीर्षक है, पहला जातीय धर्म, आदिम धर्म अथवा प्रारंभिक धर्म। जातीय धर्म आदिम काल के मनुष्यों की अधार्मिक भावना को व्यक्त करता है। इसे प्रारंभिक धर्म की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि यह प्रारंभिक युग के मानव का धर्म है, क्योंकि वर्तमान युग में भी प्रारंभिक धर्म के उदाहरण मिलते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है असभ्यकालीन मनुष्य का धर्म। प्राचीन धर्म को जातीय धर्म कहा जाता है। आदिम युग में मनुष्य जातीय संबंध से संगठित रहते थे। जातीय संबंध के कारण व्यक्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना समुदाय या जाति को। समाज सर्वोपरि था। सुख दुख, निराशा, आशा, कर्मठता आदि व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक होते थे। समाज के विपरीत कोई कार्य करने पर व्यक्ति दंडित होता था। समाज के समस्त क्रियाकलाप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते रहते थे। सामाजिक नियम ही उनके नैतिक नियम बनते थे। धर्म समाज तथा नैतिकता का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। पृष्ठ संख्या 84। प्रारंभिक धर्म में समाज को अत्यधिक महत्व देते हुए भी व्यक्ति पराशक्ति में विश्वास रखता था। वह पराशक्ति दृश्य की अपेक्षा अदृश्य रूप से मानव चेतना में वर्तमान थी। यही धर्म के मूल रूप में विद्यमान थी। प्रारंभिक धर्म की भी कई अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है। पहला है जीववाद, दूसरा है प्राणवाद या आत्मवाद, तीसरा है फिटिशवाद, चौथा है मानववाद, पांचवा है टोटमवाद। अब अगला शीर्षक है, पहला जीववाद। जीववाद की विस्तृत व्याख्या पिछले पृष्ठों में की जा चुकी है। प्रारंभिक या जातीय धर्म का यह सर्वप्रथम विकास माना जा सकता है। इसके अनुसार आदिम मानव का विश्वास था कि प्रकृति की संपूर्ण वस्तुओं में जीव का निवास रहता है। यद्यपि यह धर्म का अत्यंत ही प्रारंभिक रूप है, फिर भी धर्म की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव चेतना में चैतन्य का भाव यहीं से प्रकट होता है और आत्मा की धारणा का सूत्रपात भी यहीं से होता है। अगला शीर्षक है, दूसरा प्राणवाद या आत्मवाद। जीववाद से ही प्राणवाद का विकास होता है। इस मत में शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी मान्यता से आगे चलकर उच्च आध्यात्मिक धारणाओं का विकास देखा जाता है। इसके अनुसार संपूर्ण विश्व जीवो या स्पिरिट से पूर्ण है। प्राण अदृश्य होते हुए भी विश्व की समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। धर्म की यह अवस्था व्यापक कही जा सकती है। सभी देशों में इसके उदाहरण मिलते हैं। प्राणवाद के अनुसार जीव अच्छे और दुष्ट स्वभाव वाले भी होते हैं। मनुष्य के रोगों का कारण दुष्ट जीव ही होते हैं। रोगी के शरीर में दुष्ट जीव निवास करते हैं। रोग से छुटकारा का अर्थ है जीव का रोगी के शरीर को छोड़ देना। अब आगे है प्राणवाद और जीववाद में भेद। पहला है, जीववाद में आत्मा या जीव का शरीर से संबंध अस्थाई होता है, जबकि प्राणवाद में यह संबंध अस्थाई है। बिंदु दूसरा है, प्राणवाद में आत्मा का अस्तित्व बिना वस्तु के भी माना जाता है, परंतु जीववाद में जीव या आत्मा शरीर पर निर्भर करता है। तीसरा है, प्राणवाद में स्वतंत्र जीव की कल्पना होने के कारण उसकी उपासना आध्यात्मिक अर्थ में मानी जा सकती है, परंतु जीववाद में आत्मा पराश्रित है। चौथा है, जीववाद में आत्मा के अस्पष्ट तथा प्राणवाद में अस्पष्ट विचार मिलते हैं। पांचवा है, प्राणवाद की यह भी मान्यता है कि शरीर पर आघात होने से पीड़ा का अनुभव आत्मा को ही होता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि एक ही आत्मा अनेक शरीरों में बारी बारी से प्रविष्ट हो सकती है। इस प्रकार एक शरीर में अनेक आत्माएं बारी बारी से रह सकती हैं। जीववाद में इस प्रकार की धारणा नहीं मिलती। सारांश यह है कि प्राणवाद में आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र माना गया है। आत्मा का विचरण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। प्राणवाद में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की धारणा निम्नलिखित आधारों पर विकसित मानी जा सकती है। अगला शीर्षक है, पहला, स्वप्न की अनुभूति द्वारा। आदिम मनुष्य यह मानता था कि स्वप्ना अवस्था में आत्मा शरीर को छोड़कर संसार में विचरण करती है और जागृत अवस्था में पुनः शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस आधार पर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है। वह शरीर के बिना भी रह सकती है। पृष्ठ संख्या 85। आदिम काल के लोग स्वप्नों में अपने मित्रों और पूर्वजों को भी देखकर यह समझते थे कि आत्मा शरीर को छोड़कर कहीं भी भ्रमण कर सकती है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, वह शरीर में बद्ध नहीं है। अगला शीर्षक है, दूसरा, छाया की व्याख्या द्वारा। आदिमकालीन मनुष्य अपनी छाया को देखकर यह मानता था कि एक द्वितीय आत्मा भी है। छाया उसकी आत्मा के प्रतीक के रूप में थी। प्रकाश में छाया उसके साथ सदैव रहती थी और सूर्यास्त के साथ ही छाया का भी अंत हो जाता था। वह चलते फिरते अपने प्रतिबिंब को साथ साथ पाता था, जल में भी अपनी छाया देखता था। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आत्मा शरीर को छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती है। आत्मा और शरीर का नित्य संबंध नहीं है। इस प्रसंग में प्रोफेसर गैलवे का कथन है कि प्राणवाद का विकास जीववादी धारणा से ही हुआ है। अगला शीर्षक है प्राणवाद और धर्म दर्शन। आदिमकालीन प्राणवाद की इस धारणा को धर्म दर्शन के अनेक सिद्धांतों का जन्म होता है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में प्राणवाद का महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार है। इसमें पहला है मन और शरीर का द्वैत। प्राणवाद में शरीर से स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व माना गया, इसलिए इसी आधार पर शरीर और आत्मा अर्थात मन के द्वैत सिद्धांत की धारणा विकसित हुई है। धर्म दर्शन में इस पर गहन रूप से विचार किया गया, यह प्राणवाद की ही देन है। बिंदु दूसरा है आत्मा की अमरता। धर्म दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मा और उसकी अमरता है। यह धारणा उसे प्राणवाद से ही प्राप्त हुई है। प्राणवाद यह मानता है कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र है, शरीर के मृत होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। आत्मा अनेक शरीरों में प्रविष्ट हो सकती है और बाहर भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आत्मा है, यह प्राणवाद की देन है। अगला बिंदु तीसरा है पूर्वज आराधना का सूत्रपात। प्राणवाद से ही पूर्वज आराधना का प्रारंभ माना जा सकता है, क्योंकि आत्मा का शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व है। इससे मरे हुए पूर्वजों की सत्ता भी प्रमाणित होती है और उन पूर्वजों को लोग स्वप्नों में भी देखते थे, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना भी होती थी। चौथा है ईश्वरवाद का विकास। प्राणवाद आत्मा की अमरता में विश्वास करता है और आत्मा शरीर के माध्यम से अपने को प्रकट भी करती है। इस धारणा से ही प्राणवाद ने ईश्वर के व्यक्तित्व को जन्म दिया। ईश्वरवाद धर्म का केंद्र बिंदु है। धर्म के विकास में प्राणवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा है अध्यात्मवाद का विकास। प्राणवाद ने शरीर से अधिक महत्व आत्मा को दिया, इसलिए इसके आधार पर अध्यात्म को जन्म मिला। अब अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा फिटिशवाद। जातीय या प्रारंभिक धर्म का विकास जीववाद तथा प्राणवाद के पश्चात फिटिशवाद के रूप में माना जाता है। धर्म की दृष्टि से जीववाद की अपेक्षा प्राणवाद अधिक पुष्ट और सारगर्भित माना जा सकता है, परंतु ऐतिहासिक प्रगति में कभी कभी ह्रास भी देखा जाता है। धर्म के इतिहास में प्राणवाद के पश्चात फिटिशवाद का प्रारंभ ह्रास और पतन का ही परिचायक है। प्राणवाद जहां आध्यात्मवाद के अधिक निकट पहुंच चुका था, वहीं फिटिशवाद जादू चमत्कार तथा अंधविश्वास के अधिक निकट पहुंच गया। फिटिशवाद एक प्रकार का धार्मिक विश्वास है। फिटिश एक जड़ पदार्थ है, इसमें किसी आत्मा या शक्ति का निवास रहता है। पृष्ठ संख्या 86। आदिमकालीन मानव इस फिटिश की पूजा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करता था। फिटिश शब्द पुर्तगाली भाषा के फाइटिको से बना है, जिसका अर्थ आकर्षण या रमणीयता होता है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी पूजा 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के नाविक करते थे। पश्चिमी अफ्रीका में भी इसकी आराधना होती है। एक मत यह भी प्रचलित है कि फिटिश एक विलक्षण पत्थर या मृत मनुष्य के शरीर का कोई अंग होता है। उसमें रहस्यमयी शक्ति या आत्मा का निवास माना जाता था। उस शक्ति के निवास से फिटिश में अद्भुत प्रकार की शक्ति मानी जाती थी। कुछ लोगों का मत है कि फिटिश ओझा द्वारा निर्मित एक वस्तु होती है। ओझा बलि, प्रार्थना, पूजा द्वारा फिटिश को प्रसन्न करता था और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य संपन्न कराता था। यदि इससे कार्य पूरा नहीं होता था तो समझा जाता था कि उसमें रहस्यमयी शक्ति या आत्मा का निवास अब नहीं है। फिर उसे त्याग दिया जाता था और दूसरे नए फिटिश की खोज की जाती थी। लगता है कि फिटिशवाद में उपयोगितावाद की प्रधानता थी। आदिम मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही फिटिश की पूजा करता था। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उसे त्याग दिया जाता था। अब अगला शीर्षक है आलोचना। इतना तो निश्चित है कि फिटिशवाद का जन्म प्राणवाद से ही हुआ, क्योंकि इसमें भी किसी आत्मा या रहस्यमयी शक्ति का ही निवास माना जाता है। परंतु यह धर्म का बड़ा ही विकृत रूप है। यह धर्म की अपेक्षा जादू के अधिक निकट माना जा सकता है। इसमें चमत्कारिक शक्ति का आरोपण किया जाता है, जो उपयोगिता परक कही जाती है। धर्म में आदर, श्रद्धा तथा कृतज्ञता की जो भावना होनी चाहिए वह इसमें नहीं है। इसमें अंधविश्वास की अधिकता है। धर्म दार्शनिकों का विचार है कि धर्म के इतिहास में यह प्रगति का नहीं बल्कि अगति का द्योतक है और इसे धर्म की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती। अगला शीर्षक है चौथा, मानवाद। मैरेटे आदि विद्वानों के अनुसार मानवाद आदिम धर्म के विकास का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मैरेट आदि विद्वानों का कहना है कि जीववाद के पहले से ही आदिम मानव माना नामक अद्भुत शक्ति में विश्वास करता था, जिसकी अभिव्यक्ति भौतिक या मानवीय शक्ति में होती थी। इसकी विस्तृत व्याख्या पिछले पृष्ठों में की जा चुकी है। धर्म के विकास में इसकी सबसे बड़ी देन जीवात्मा में विश्वास के रूप में है। इसी मत ने जीववादी मत को बल दिया है। रहस्यमयता की उद्भावना, जो धर्म में आवश्यक तत्व है, माना की धारणा से हुई है। अगला शीर्षक है बिंदु पांचवा, टोटमवाद। टोटमवाद का विस्तृत अध्ययन पीछे किया जा चुका है। हमने देखा है कि किस प्रकार आदिम मानव टोटम पशु की पूजा और आराधना करता था। इससे धार्मिक तत्वों का कई रूपों में विकास देखा जाता है। हमने यह भी देखा है कि फ्रायड ने किस प्रकार टोटमवाद के आधार पर ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार की है। जो कुछ भी हो, धर्म में टोटम पूजा के कारण ही कर्मकांड, बलि तथा पूजा आदि क्रियाओं का विकास हुआ। साथ में जादू टोने की क्रिया भी प्रचलित रही है, परंतु जादू धर्म से अलग ही कहा जा सकता है। अगला शीर्षक है जातीय धर्म की विशेषताएं। जातीय धर्म का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। जीववाद, प्राणवाद, फिटिशवाद, मानववाद तथा टोटमवाद के बीच होते हुए आदिम धर्म विकास की प्रक्रिया में चलता रहा। इन विभिन्न रूपों में चलते हुए धर्म में कुछ सामान्य बातें निहित थीं। यही जाति धर्म की विशेषता के रूप में कही जा सकती हैं। पृष्ठ संख्या 87, बिंदु पहला है धर्म और जादू में सामंजस्य। यह देखा जाता है कि जातीय धर्म जादू से बिल्कुल घुला मिला था। इन दोनों को अलग करना कठिन है। फेटिशवाद, मानववाद और टोटमवाद में तो जादू का प्रभाव अधिक था। कुछ लोग इन धार्मिक रूपों को धर्म न कहकर जादू ही कहना उचित समझते हैं। बिंदु दूसरा है अंधविश्वास की प्रधानता। जातीय धर्म में अंधविश्वास की प्रधानता पाई जाती है। मानववाद, प्राणवाद, फिटिशवाद और टोटमवाद में पूर्णतया अंधविश्वास भरा पड़ा है। माना के प्रभाव के कारण ही लोग फसल की वृद्धि मानते थे। मनुष्य अधिक मात्रा में मछलियों को पकड़ सकता था या रोगी को रोग मुक्त मानते थे। प्राणवाद में भी रोग का कारण दुष्ट आत्मा को माना जाता था। टोटमवाद में टोटम पशु के रुष्ट होने से अनिष्ट होने का भय था। बिंदु तीसरा है वैज्ञानिक व्याख्या का अभाव। जातीय धर्म में यह देखा जाता है कि आदिम काल में लोग घटनाओं की व्याख्या धार्मिकता के आधार पर करते थे, परंतु उसमें वैज्ञानिकता का अभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए महामारी जैसे चेचक आदि बीमारी का कारण एकाएक जाते हुए ऊंट को देखकर मानना या किसी स्त्री के गर्भवती होने का कारण गर्भ में किसी दैवी शक्ति के प्रवेश को मानना। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जातीय धर्म में रोग का कारण प्रेत आत्मा को माना जाता था। इस प्रकार घटनाओं की व्याख्या अवैज्ञानिक ढंग से की जाती थी। बिंदु चौथा है आत्मा का बोध आध्यात्मिक अर्थ में नहीं। प्राचीन धर्म में जीवात्मा की धारणा अवश्य मिलती है, परंतु वह आध्यात्मिक अर्थ में नहीं है। आत्मा का आधार किसी वस्तु को ही माना गया है। अधिकतर आदिमकालीन आत्मा का संबंध भूत प्रेत के साथ ही देखा जाता है। बिंदु पांचवा है स्वार्थ एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण। प्राचीन धर्म में जिस शक्ति की पूजा की जाती थी वह केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही है। धर्म उपयोगिता परक था। शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति या अपने अभावों की पूर्ति के लिए ही पूजा होती थी। ईश्वर या स्वर्ग की प्राप्ति की कोई कामना नहीं देखी जाती। बिंदु छठवां है अस्पष्ट एवं व्यक्तित्वहीन ईश्वर विचार। प्राचीन धर्म में ईश्वर का स्पष्ट विचार नहीं मिलता। ईश्वर की कल्पना व्यक्तित्वहीन रूप में है। जब व्यक्तित्व ही नहीं है तो उसमें गुणों का भी अभाव देखा जाता है। ईश्वर आध्यात्मिक अर्थ में नहीं है। जीव आत्मा या किसी अद्भुत शक्ति की पूजा मिलती है जिसमें ईश्वर के विचार अस्पष्ट रूप में ही हैं। बिंदु सातवां है विभेदीकरण की भावना। जातीय धर्म में विभिन्न गिरोह के लोग अपने अपने गिरोह को ही अधिक महत्व देते थे। उसी गिरोह की सामाजिक परंपराओं और नियमों का पालन करते थे। कोई एक ऐसा धर्म नहीं था जिसका पालन सभी गिरोह मिलकर करते। आगे चलकर यह भावना राष्ट्रीय धर्म में समाप्त हो जाती है। बिंदु आठवां है व्यक्ति की अपेक्षा जाति का या समूह का अधिक महत्व। जातीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस धर्म में व्यक्तित्ववाद को प्रश्रय नहीं मिला। जात को सर्वोपरि माना जाता था। व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी नियम या रीत रिवाज का पालन नहीं कर सकता था। टोली का अंग होने के कारण समूह के नियमों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य था। अतः यही कारण है कि इस धर्म में व्यक्तिवादी धर्म को प्रोत्साहन नहीं मिला। पृष्ठ संख्या 88। अगला शीर्षक है जातीय धर्म के दोष। इसमें पहला शीर्षक है भय पर आधारित धर्म। आदिम मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए निरंतर संघर्षरत था तथा अनेक हिंसक जीवों से भयभीत रहता था। अतः एक ओर अभावों का भय और दूसरी ओर जीवों के भय से वह आक्रांत रहने के कारण अपने से अधिक बलवान हिंसक जीवों में अधिक शक्ति मानने लगा और उनकी पूजा भी करने लगा। इस प्रकार जातीय धर्म भय से ही संचालित देखा जाता है। अगला शीर्षक है दूसरा प्रारंभिक धर्म संकीर्ण है। प्रारंभिक धर्म में मनुष्य अलग अलग टोलियों में रहता था और उन टोलियों का अपना अलग अलग धर्म भी होता था। कोई ऐसा धर्म नहीं था जो व्यापक रूप से प्रचलित रहा हो और जिसे सभी टोलियां मानती रही हों। इस प्रकार इस काल का धर्म संकीर्ण ही कहा जा सकता है। अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा, व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की धारणा का अभाव। आदिम धर्म में जीवों को ही ईश्वर के रूप में कल्पित किया गया था। एक व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की धारणा का विकास इस धर्म में नहीं देखा जाता। जिन जीव आत्माओं की कल्पना की गई है वे शक्तिशाली अवश्य हैं, परंतु उनमें नैतिक गुणों का अभाव देखा जाता है। न्याय, पवित्रता, क्षमाशीलता, प्रेम आदि नैतिक गुण यदि इस काल के धर्म में माने हुए ईश्वर में होते तो वह धार्मिक जीवन के लिए अधिक लाभप्रद होता। अगला शीर्षक है बिंदु चौथा, जादू, अंधविश्वास तथा रूढ़िवाद का प्रभाव। आदिम धर्म जादू से इतना अधिक संबंधित है कि उसे धर्म की अपेक्षा जादू ही कहना चाहिए। रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण धर्म की प्रगति भी रुकती रही। अब अगला शीर्षक है जातीय धर्म के गुण और धर्म दर्शन में योगदान। जातीय धर्म आदिम धर्म है, यह धर्म का आदि रूप है, इसलिए धर्म के विषय में वर्तमान दृष्टिकोण से वह अंधविश्वास, जादू टोने आदि से युक्त होते हुए भी निरर्थक नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक रूप अस्पष्ट ही प्रतीत होता है, वही विकसित होने पर अस्पष्ट और उपयोगी सिद्ध होता है। आदिम धर्म ने धर्म दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सर्वप्रथम जीव संबंधी विचार इसी से मिलता है। प्राणवाद में आत्मा के विचार से ही एक आध्यात्मिक आत्मा का विचार उदित हुआ। पूर्वज आराधना से कई सामाजिक गुणों का विकास हुआ। साथ ही धार्मिक व्यवहारों यथा पूजा, प्रार्थना आदि का प्रचलन हुआ। संगठन, आत्मीयता और सहयोग की भावना जगी। सामाजिकता और नैतिकता का लोगों में सूत्रपात यहीं से माना जाना चाहिए। सामाजिक आचारों और रीति रिवाजों के प्रति एक निष्ठता का भाव इसी की देन है। इसी से आध्यात्मिक भावों के विकास को बल मिला है। सबसे बड़ी देन तो यह है कि आदिम धर्म में बहुजीववाद की पूजा से ही बहुदेववाद की पूजा का श्री गणेश हुआ। यह धारणा धर्म और आध्यात्मिक विकास के लिए अमूल्य निधि है।